आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
कहते हैं कि शादी के बाद लाइफ में हंसना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आज के हमारे जो गेस्ट हैं, इन्होंने इसी शादीशुदा जीवन को ही अपनी कॉमेडी का सबसे बड़ा हथियार बना दिया। इन्हें लोग प्यार से कहते हैं मैरिड गाय ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी। देश और विदेश में उन्होंने अपने शो से लाखों लोगों को हंसाया है और अब वो भारत के सबसे लोकप्रिय और रिलेटेबल कॉमेडियंस में गिने जाते हैं। इन्होंने अपनी कॉर्पोरेट जिंदगी छोड़ी, माइक उठाया और अपने रोजमर्रा के किस्सों को पंच लाइन बना दिया। आइए स्वागत करते हैं भारत के सबसे रिलेटेबल कॉमेडियंस में से एक, अमित टंडन का। अमित, SBS हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
थैंक यू स्वाति, थैंक यू सो मच।
सालों पहले जब आपने कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ने का फैसला लिया था, तब क्या लग रहा था कि सही डिसीजन ले रहा हूँ?
हाँ, तो मैंने क्या है कि काफी प्लान करके डिसीजन लिया। मैंने काफी सारे कॉमेडी और अपना करियर इकट्ठे चलाया। मतलब मैं अपना बिजनेस रन कर रहा था HR कंसल्टिंग का, तो मैंने तब जाके अपना बिजनेस बंद किया जब ये हो गया कि अब पैसे बन रहे हैं कॉमेडी से, जितने बिजनेस से बन रहे थे उससे ज्यादा बन रहे हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी घर पे, बच्चे थे, फैमिली थी पूरी, पेरेंट्स के साथ रहते थे। तो मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता था कि भाई मुझे अब अपना पैशन फॉलो करना है और अब तुम अपना देख लो, वो नहीं करना चाहता था। तो वो मेहनत लगी, 6-7 साल दोनों चीजें इकट्ठी करी हैं। हैवी ट्रैवलिंग होती थी, पर साथ में फोन कॉल और लैपटॉप, फिर सारी रात भी चल रहा है, दिन में भी चल रहा है। वो 6-7 साल थोड़े चैलेंजिंग रहे, बट मैंने फाइनली छोड़ा तभी जब मुझे हो गया कि हाँ, मैं अपना घर कॉमेडी से चला सकता हूँ।
तो काफी सेफ और सोचा समझा डिसीजन था जैसा आपने बताया। तो अमित, मुझे याद है आपसे लगभग 7 साल पहले बात हुई थी, उस समय और अब में बहुत बड़ा एक फर्क आ गया। बीच में कोविड आ गया था जिसने दुनिया का नक्शा ही काफी हद तक बदल दिया। तो पोस्ट कोविड कॉमेडी सीन या कॉन्टेंट क्रिएशन स्पेस में आपको क्या बदलाव दिखते हैं?
हाँ, तो एक तो कोविड के टाइम में मुझे लगता है कि इंटरनेट का कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ गया एकदम से, क्योंकि लोग घर बैठे थे, अब वो स्टेज पे नहीं जा पा रहे थे, वो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो लोगों ने और बहुत सारे मीडियम्स एक्सप्लोर करे, चाहे वो स्ट्रीमिंग में गए, चाहे उन्होंने रील्स बनानी शुरू करी, और उसकी वजह से पूरा मुझे लगता है कि कॉमेडी ओवरऑल में बहुत चेंज आ गया। क्योंकि अगर मैं थोड़ा लंबा इसका जवाब दूं, आई गिव यू एन एग्जांपल, पहले क्या होता था कि जो कॉमेडी सीन था इंडिया में बड़े सिटीज में था, टीयर वन में था लार्जली, ठीक है। तो अगर आप कहीं गोरखपुर में रहते हो, आप कहीं मान लो उदयपुर में रहते हो, कहीं भी टीयर टू टीयर थ्री सिटी में रहते हो, जलंधर में या कहीं पर, और आप कॉमेडी करना चाहते हो, तो वहां कॉमेडी नहीं हो रही है, ठीक है। तो बट कोविड में क्या हुआ कि ओपन माइक्स जो है वो ऑनलाइन होने लग गए। ऑनलाइन का मतलब है कि अब आप कहीं पर भी हो सकते हो, हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान से बाहर भी हो सकते हो, आप वो ओपन माइक अटेंड कर सकते हो, और उसके कारण छोटे सिटीज में भी बहुत सारे लोगों ने कॉमेडी ट्राई करनी शुरू करी। एंड उसके बाद जैसे ही खुला तो कुछ क्लब्स, कुछ ओपन माइक छोटे सिटीज में शुरू हो गए, क्योंकि लोगों को लगा कि हाँ, अब हम कर सकते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा चेंज आया। और तीसरा मुझे लगता है कि कोविड की वजह से लोगों में लाइव इवेंट की भूख बहुत बढ़ गई, तो जब खुला और लोगों का डर खत्म हुआ, तो उसके बाद जो लोग खुल के आए हैं, तो अब लाइव कॉमेडी का जो स्केल है वो मेरे ख्याल में प्री कोविड वर्सेस पोस्ट कोविड में कम से कम 5 गुना का फर्क आ गया होगा अभी तक।
तो आपने जैसे OTT की भी बात की, अब तो OTT बेसिकली देखा जाए तो मेन स्ट्रीम के जैसा बन गया है। और आर्टिस्ट के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज और नई आ गई हैं, क्योंकि कांस्टेंट फ्लो ऑफ आर्टिस्ट हो रहा है कि लगातार नए आर्टिस्ट भी आते जा रहे हैं, तो आप वेटरन कह सकती हूँ मैं आपको,
इंडियन स्केल के हिसाब से वेटरन हो गए।
तो उस हिसाब से जो बहुत समय से कॉमेडी कर रहे हैं लोग या आर्टिस्ट हैं, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और OTT के प्लेटफॉर्म्स में?
सो OTT आई थिंक अब मतलब कॉमेडियंस के लिए ज्यादा कुछ ऑफर नहीं कर पा रहा है अभी। अब थोड़ा वो सैचुरेशन आ गया है, तो उनको नए लोग एक्वायर नहीं करने हैं, तो कंटेंट कम एक्वायर कर रहे हैं, और जो कंटेंट एक्वायर कर भी रहे हैं वो लार्जली वही जोन का कर रहे हैं जो पहले टेलीविजन में होता था, ठीक है। तो अगर आप देखोगे पिछले कुछ सालों में कंटेंट शिफ्ट बहुत आया है OTT प्लेटफॉर्म में। पहले बहुत अच्छी सीरीज भी आ रही थी, पर अब धीरे धीरे ये है कि हर तरीके के, उनको कंट्रोवर्शियल वाले भी चाहिए, उनको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, एंड कॉमेडियंस कम दिख रहे हैं. इनफैक्ट कॉमेडियंस के लिए जो नया आयाम, अगर मैं बोलूं, जो खुला है पिछले 2 साल में, वो ये है कि कॉमेडियंस ने अपने अपने यूट्यूब चैनल्स पे नए नए कॉन्सेप्ट शोज होस्ट करने शुरू कर दिए हैं, और उसकी वजह से उनकी रीच बहुत बड़ी है. अब सिर्फ स्टैंड अप नहीं करे, क्योंकि स्टैंड अप क्या है कि स्टैंड अप आप अगर आप अच्छा क्वालिटी का लिखते हो तो उसको रिलीज करने में आपको 1 साल लग जाता है. तो आप 1 साल में 25-30 मिनट, 1 घंटे से ज्यादा का कंटेंट नहीं रिलीज कर पाते, ठीक है. पर आपको लोगों को और कंटेंट देना है, तो ये क्या है कि जैसे इंडियाज गॉट लेटेंट आया था, उसी तरह से बहुत सारे और शोज हैं आज की डेट में. मधुर विल्ली का एक शो है, एक वो रिलेशनशिप है जो आया है पीछे. तो ऐसे बहुत सारे आज की डेट में कम से कम नहीं तो 8-10 शोज हैं, जो डेवलप हुए हैं पिछले 2-3 सालों में, जो लोगों ने अपने चैनल्स पे डालने शुरू करे, जिसकी वजह से एक तो उनकी विजिबिलिटी बढ़ गई और उनकी स्टैंड अप की सेल्स बढ़ गई है. फायदा क्या है कि यूट्यूब इज योर ओन रियल एस्टेट. जितना आप डालते हो, आपके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो आपकी ओवरऑल अर्निंग्स बढ़ती जाती है, एंड यू गेट मनी फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ एज लॉन्ग एज पीपल आर वॉचिंग इट. तो अभी यूट्यूब की तरफ पिछले 2-3 साल में रुझान काफी ज्यादा बढ़ा है. मैंने बड़ी देर बाद रुझान वर्ड यूज किया है,
क्योंकि आप SBS हिंदी के साथ बात कर रहे हैं ना, तो वो माहौल बन गया है शायद इसलिए. आपने इतने सारे शोज की बात की जो यूट्यूब पे चल रहे हैं, उनमें एक और नया शो जो आजकल है वो चार यार, जो आपका पॉडकास्ट है, उसका आइडिया आपका कैसे बना, उसका प्लान कैसे बना, और इस फॉर्मेट में जिस तरीके का कंटेंट होता है, उसके बारे में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगती है?
तो मुझे ये था कि मुझे एक तो मैं कुछ करना चाहता था, पर मैं जबरदस्ती नहीं करना चाहता था कि बाकी सारे कर रहे हैं तो मुझे भी करना है ऐसे टाइप का, तो मुझे वो नहीं करना था. और दूसरा, मैं पॉडकास्ट भी नहीं करना चाहता था रेगुलर वाली की, जहां मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ हर बार गेस्ट से और वो सब चल रहा है. और मैं जितना इंटरनेट अभी देख रहा था, जैसे तन्मय का एक वो तन्मय रिएक्ट आता है जैसे, वो मुझे फॉर्मेट बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, क्योंकि उसमें आज की डेट में मुझे लगता है कि लोनलीनेस इज अ बिग प्रॉब्लम.
इट इज, बिल्कुल सही बात.
तो आपके दोस्त हैं पर आपके साथ नहीं है, बहुत कम टाइम होते हैं तुम्हारे आपके साथ, प्रोग्राम बनने में. अब हमारे एज ग्रुप में तो प्रोग्राम बनने बनने में 3-3 महीने लग जाते हैं मिलने के लिए. जब मैं वो तन्मय वाला शो देखता था तो मुझे वही लगता था कि ये ऑलमोस्ट वो फील आ रही है कि जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हूँ, वही बातें हो रही हैं. तो मुझे फिर यही लगा कि मैं ऐसा ही कुछ करना चाहूंगा जो एक तो मुझे भी मजा आएगा कि मैं अपने दोस्तों के साथ बैठ के बात कर रहा हूँ और अनरिस्ट्रिक्टेड बात कर रहे हैं हम, और जो देखने वाला है उसको भी ये लगे कि हाँ मेरे दोस्त ही बात कर रहे हैं, जैसे उस प्रोग्राम में मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा पर बातें मेरी जैसी ही हो रही है. चार यार का पूरा पर्पस वही था, इसीलिए मैं कोई सेलिब्रिटीज नहीं लेके आया कभी, मैं सिर्फ कमेडियंस को लेके आया, क्योंकि मुझे वो ग्रीन रूम वाला माहौल या वो ड्राइंग रूम वाला माहौल, ओके, जहाँ लोग आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे का मजाक भी उड़ा रहे हैं, टांग भी खींच रहे हैं, कुछ समझदारी की बातें भी बीच बीच में कर रहे हैं, आप दोस्तों के साथ करते हैं.
हाँ, बिल्कुल. जब मैंने भी देखा है तो कॉमेडियंस को नॉर्मल लोगों की तरह बातचीत करते हुए देखना बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, और अपने लाइफ के छोटे छोटे किस्सों में फनी चीजें निकालना और ढूंढ कर शेयर करना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट उसका मुझे लगता है. तो वो तो जा रहा है आपका सही दिशा में, मुझे ऐसा लग रहा है. आपने तन्मय की बात की और आपने लेटेंट की बात की. कॉमेडियंस के लिए इंडिया में काफी ज्यादा चुनौतियां बढ़ गई हैं पिछले कुछ सालों में, इसका कोई हल लगता है आपको?
नहीं, ये थोड़ा बहुत चलता रहेगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि कॉमेडी बंद हो रही है या उनके करियर खत्म हो रहे हैं. तो अगर आप देख लीजिए जिनके भी आप नाम सोचेंगे, उनके करियर तो अच्छे चल ही रहे हैं. ऐसा है कि कंट्रोवर्सीज हैं, कंट्रोवर्सीज तो आप देखेंगे तो जिसको उठानी है वो कोई ना कोई तो नाराज होगा ही होगा, ठीक है. अब मैंने तो जनरली यही देखा है कि जिनके कॉन्ट्रोवर्सीज आई भी हैं, देयर फैंस आर स्टैंडिंग बाय देम, ठीक है. उनके फैंस कोई उनको छोड़ के नहीं जा रहे, वो अभी भी उनकी टिकट खरीद रहे हैं, उनके पास अभी भी काम आ रहा है और बढ़िया चल रहा है उनका काम जनरली सबका. सो दैट वे आई डोंट थिंक इट्स अ प्रॉब्लम.
आपके परिवार के आप सारे किस्से आप स्टेज पर शेयर करते हो, अब आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, उनके भी किस्से आपके शो का हिस्सा बने होते हैं, तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं जब आप उनकी लाइफ स्टेज पर शेयर कर रहे हैं?
अब तो ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, क्योंकि देखो
आदत हो गई है,
उनको रिकॉग्निशन भी मिल रही है, सारा कुछ हो रहा है. तो कभी कुछ हुआ नहीं, सिर्फ पेरेंट्स को शुरू शुरू में लगता था कि तू हमारे बारे में कितना बोलता है.
बच्चों को आदत हो गई है या बच्चे अब उसी रंग में रंग गए हैं, या वो ऐसा कभी नहीं कहते कि यार पापा आप क्या मेरी बेइज्जती कर दी आपने, मेरे दोस्त मुझे तंग कर रहे हैं, छेड़ रहे
अरे
हैं।
नहीं, ऐसा मैं नेटफ्लिक्स पे आया था, तो नेटफ्लिक्स में एंड में वो तीनों आते हैं स्टेज पे, अपनी
हाँ
वाइफ
यस
और दोनों बच्चे, तो मैंने उनको बोला देखो तुम अपनी क्लास में अकेले हो जो नेटफ्लिक्स पे आए हो और तुम्हारा नाम भी आया क्लास में, कास्टिंग में।
बिल्कुल, ये बात आपकी
हाँ
सही है। कभी आपको ऐसा
जी,
डर लगा है स्टेज पे अपना जोक मेरा फ्लॉप हो जाए तो?
जब भी नया सेट लिखते हैं तब तो ये डर लगता ही है, और वो डर जरूरी भी है बहुत, अगर वो डर लगना बंद हो जाए तो फिर आप ऑडियंस को सुन नहीं रहे हैं, फिर आप में ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है तो वो कभी काम नहीं करता, तो ये डर तो हमेशा लगता है कि जोक चलेगा कि नहीं चलेगा वाला रहता है हमेशा।
तो कभी अपने जोक पे हंसी आ गई स्टेज पर, ऐसा हुआ है कभी?
हाँ, वो जब शो बहुत अच्छा जा रहा होता है और मुझे अपने जोक से ज्यादा जिस तरह से लोग रिस्पॉन्ड करते हैं उस पे हंसी आती है, क्योंकि वो कई बार वो जो बहुत रिलेटेबल वाले जोन होते हैं तो उसमें मुझे दिख रहा होता है कि लोग आपस में हस्बैंड वाइफ या बच्चे और पेरेंट्स आपस में एक दूसरे को बोल रहे देखो यही होता है अपने घर पे भी यही होता है, अरे तू भी तो यही करता है, एंड शी इज लाइक नहीं, मैं ऐसे नहीं करती, वो मुझे काफी उसमें हंसी आती है।
शादीशुदा लाइफ को फिल्म्स बहुत ज्यादा रोमांटिसाइज कर देती हैं, पर असल में ऐसी कौन सी चीज है जिसको रोमांटिसाइज बहुत किया जाता है पर रियलिटी उससे थोड़ी थोड़ी नहीं काफी दूर होती है?
हाँ, वो जो
हाँ
रोमांटिसाइज करते हैं ना कि दोनों जने इकट्ठे कुछ कर रहे हैं, ठीक है, वो दिखाते हैं ना गानों में कि किचन में मान लो एक जना खाना बना रहा है दूसरा जना सब्जी काट रहा है, कभी नहीं कर सकते, किचन में दो लोग इकट्ठे काम नहीं कर सकते, या मैं कर सकता हूँ या मेरी वाइफ कर सकती है, 95% ऑफ द टाइम वही करती है, बट इफ आई एम स्टैंडिंग देयर तो वो भी उसको इरिटेटिंग लगता है कि तू जाके बैठ जा अंदर। अरे हमारे किचन का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि आप जितना मर्जी बड़ा घर बना लो, आपके पास जितना मर्जी पैसा हो, किचन में हमेशा एक ही चाकू होता है जो सबको चाहिए काटने के लिए।
ये तो बात सही है, वो एक फेवरेट होता है,
हाँ
उसकी धार भी परफेक्ट होती है और उसका शेप,
हाँ
एवरीथिंग।
वो एक ही होता है तो तुम हमेशा तो एक ही दिना काम कर सकते हैं, एक दिना अपने हिसाब से मसाले सेट करके रखता है, फ्रिज एक दिन के हिसाब से सेट होता है, तो वो दो लोगों वाला नहीं होता है किचन।
जी, लास्ट पे जाते जाते आपके लिए मेरे पास कुछ रैपिड फायर सवाल हैं। तो चाय या कॉफी?
अच्छा,
इंस्टाग्राम या यूट्यूब?
यूट्यूब,
दिल्ली का खाना या मुंबई का?
दिल्ली, दिल्ली ऑफ कोर्स,
ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड?
घूमने के लिए न्यूजीलैंड बेटर।
डिप्लोमेटिक आंसर दिया आपने पूरा।
हाँ,
आपका फेवरेट कंफर्ट फूड?
कंफर्ट फूड तो दाल रोटी, दाल रोटी
यहाँ मिल रही है आपको दाल रोटी
नहीं, मैं
ऑस्ट्रेलिया
वो थोड़ा अब
न्यूजीलैंड?
वो कंफर्ट से बाहर निकलना पड़ता है ना, क्योंकि अब आपको सेहत का भी ध्यान रखना है, तो वो ज्यादा ना कि कार्ब्स कम खाने हैं, प्रोटीन खाना है, गिन गिन के उंगलियों पे, तो अभी ये होता है कि कार्ब्स जितने कम हो जाए, तो इसलिए दाल रोटी वंस इन अ व्हाइल अब खा लेते हैं, बट रोज का
जी।
नहीं हो पाता है। हाँ,
तो सुबह उठ के सबसे पहली चीज आप क्या करते हैं?
सैडली फोन चेक करता हूँ सबसे पहले।
मुश्किल हो गया है ये चीज, ये
हाँ
हैबिट हटाना
हाँ
बड़ा। आखिरी बार गूगल पे आपने क्या सर्च किया था?
वेदर, क्योंकि मैं हमेशा जब भी जान जाता हूँ अगले दिन का वेदर हमेशा चेक करता हूँ कि कैसा वेदर है, तो उस हिसाब से प्लान बनाता हूँ कि बाहर निकल सकता हूँ या रूम में रहना है या इंडोर रहना है, सो
जी,
आई चेक वेदर वेरी रेगुलर।
आपके बच्चों के हिसाब से अगर एक शब्द में बताना हो, आप कैसे पापा हैं आपके बेटे के लिए?
उसका वही प्रॉब्लम है, ही इज टू इम्प्रेस्ड विद मी राइट नाउ,
अच्छा,
तो
और
हाँ।
बेटी?
बेटी तो मुझे लगता है वो तो नौकरी समझती है मुझे लगता है, आधा नहीं, सो
और बीवी के लिए आप कैसे पति हैं?
आई थिंक आई वुड लाइक टू से वो होता है ना, वो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 तो मीटिंग एक्सपेक्टेशंस पे होपफुली अब
अच्छा।
तक पहुंच चुका हूंगा मैं।
ठीक है, आपकी आपकी फेवरेट कॉमेडियन कौन है, अपने आप को छोड़कर ऑब्वियसली?
यार ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनकी कॉमेडी मैं एंजॉय करता हूँ, बट अभी जिनका लेटेस्ट सेट जो मुझे बहुत अच्छे लगे हैं वो बिस्वा, बिस्वा कल्याण रथ, प्रशस्ति के सेट्स मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, उसने पीछे 5-6 वीडियोज उसके बहुत ही अच्छे आए हैं, तो ये दो हैं जो लाइक टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल में अभी ये आते हैं, बट बहुतों के बहुत अच्छे सेट्स अभी आते रहते, तो देयर इज
जी,
नो रैंकिंग, बड़ी मुश्किल है।
कोई ऐसी ड्रीम स्टेज या कोई ऐसी जगह जहां आप परफॉर्म करना चाहते हैं?
यार एक्चुअली जितना सोचा था लाइफ में उससे मच बेटर प्लेसेस पे परफॉर्म कर लिया है। इस साल मैंने नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर पे परफॉर्म किया था। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ ड्रीम कम ट्रू बिकॉज आई वाज द फर्स्ट कॉमेडियन टू परफॉर्म देयर एंड प्रॉब्ली ओपेरा हाउस सिडनी दैट्स ऑन माई लिस्ट राइट नाउ। सो ओपेरा हाउस हम अगली बार प्रॉब्ली करेंगे तो दैट्स ऑन माई लिस्ट।
शादी ने एक बड़ा सबसे बड़ा आपको सबक जो सिखाया वो कोई?
यू हैव टू लर्न टू कॉम्प्रोमाइज। ठीक है ये वेडिंग यू नो मैरिज डजंट वर्क विदाउट कॉम्प्रोमाइजेस। तुम ये नहीं कह सकते कि भाई दूसरा जना मेरे आसपास कर ले एडजस्ट, मैं कुछ एडजस्ट नहीं करूंगा। देयर हैज टू बी कॉम्प्रोमाइज, देयर हैव टू बी कॉम्प्रोमाइजेस ऑन बोथ एंड्स।
जी थैंक यू सो मच अमित हमारे साथ ये बातचीत करने के लिए और एसपीएस हिंदी को अपना टाइम देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सो मच।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।